ये आकाशवाणी है, अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस इकाई को प्रतिमाह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 37 अरब रुपए के निवेश वाली इस इकाई की डिजाइन आउटपुट क्षमता 3,60,00,000 यूनिट प्रतिमाह है।
जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। दिस ज्वाइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्वीकृति देश को प्रौद्योगिकी का शक्ति भंडार बनाने की दिशा में एक और कदम है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि भारत ने विश्व स्तर पर सबसे तेज 5G सेवा शुरू की है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पेमा सानी ने कहा कि 2 वर्षों में देशभर में 4,70,000 से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 5G क्रांति आई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए BSF जवान रामबाबू सिंह का बिहार में सिवान जिले के उनके पैतृक गांव वसीलपुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत आत्मा को अंतिम विदाई देने सिवान में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में स्थानीय निवासियों ने देश की संप्रभुता की खातिर उनके सर्वोच्च बलिदान पर गौरव व्यक्त किया। ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने सरकार से दिवंगत जवान की पत्नी को रोजगार और जीवन यापन के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारियों BLO को जल्दी ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे सुचारू रूप से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सकें। श्री कुमार ने कल नई दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बूथ स्तर के अधिकारियों, निरीक्षकों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए 2 दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। भारत की एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत 1267 प्रतिबंध समिति में अपना मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस संगठन को पाकिस्तान द्वारा मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय अधिकारियों से भी मिलेगी। उत्तरी और दक्षिणी गजा में इजरायली हवाई हमलों में करीब 70 लोग मारे गए हैं। इससे एक दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा कि सशस्त्र समूह हमास के पराजित होने तक वे फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमले नहीं रोकेंगे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और अस्पतालों के अनुसार उत्तरी गजा में जबालिया के आसपास हुए हमलों में ही कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम कतर की राजधानी दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप पश्चिम एशिया के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सऊदी अरब की यात्रा संपन्न कर दोहा पहुंचे। 20 वर्षों से अधिक समय में किसी अमरीकी राष्ट्रपति की कतर की ये पहली यात्रा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।